नेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उम्रे के लिए, वीवोटेल के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन, दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं। घर हो या केबिन, वीवोटेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में। विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836, 416-243-9836। कनेक्शन आपका दुनिया के साथ।
घर बनवाना हो या पुराना घर नया करना हो, अरम होम बिल्डर्स एंड रेनोवेटर्स आपके साथ हैं। कस्टम होम बिल्ड, होम एडिशन, किचन और बाथरूम रेनोवेशंस, बेसमेंट रेनोवेशन, पेंटिंग, टाइल्स और हार्डवुड फ्लोरिंग्स के लिए हर काम में महारत, मेयार और एतमाद। अभी कॉल कीजिए 416-841-5825 या विजिट कीजिए इनकी वेबसाइट aramrenovation.ca। अरम रेनोवेशन, ख्वाबों की तामीर एतमाद के साथ।
इन्ना सोना कर लिया, हुन अपलायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अपलायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, फिर टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
एलिमेंट्री स्कूल के एडमिशन्स ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज अब ओपन है, जिसे एस्टैब्लिश किया था इस्लामिक सेंटर ऑफ कैम्ब्रिज ने 1992 में और जिसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा ने 3000 ओंटारियो के स्कूल्स में से नंबर वन स्कूल का रैंक दिया था। यहाँ पे तहफीज़ुल कुरान के प्रोग्राम्स लड़के और लड़कियों दोनों को ऑफर किए जाते हैं। रजिस्टर करें अपने बच्चों को जूनियर किंडरगार्टन टू ग्रेड 8 और फायदा लें क्वालिफाइड टीचिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं @1519-740-6855 या विजिट isocambridge.com।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब आज आपका हमारा साथ रहेगा 7:30 बजे तक जनाब। बिल्कुल, अब वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन कह लें या बुरे दिन कह लें, जैसे भी कह लें, लेकिन दिन अब जो है वो कम हो रहे हैं, तो 7:30 बजे तक आज आप हमारे साथ रहेंगे। और बस शाजिद मलिक साहब अपनी उबर लेकर स्टूडियो वैसे पहुंच चुके हैं गर्मा गर्म खबरें लेकर, और उनसे पूछते हैं जी क्या खबरें, क्या हालात हैं, बड़ी मीटिंगें हो रही हैं दुनिया भर में, लोग मिल रहे हैं, दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जो है डिफरेंट मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि जनाब हम एक साथ हैं और हम इतनी बड़ी फोर्स हैं, 30% दुनिया की जो है वो बिजनेस को हम डील करते हैं और भी बहुत सारी बातें। फिर कनाडा को लेकर बड़ी जो है ना वो सिचुएशन गंभीर है, आने वाले वक्त में कनाडा के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अभी कोर्ट के मामलात भी जो हैं चल रहे हैं टैरिफ के ऊपर, वो भी खबर देंगी शाजिया मलिक साहब। इसके अलावा क्रिकेट की खबरें, पाकिस्तान ठीक है, अफगानिस्तान आप कहते ना कि अफगानिस्तान भी हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन यूएई के साथ भी जो है वो अच्छा मैच खेला, उसका भी रिजल्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगी शाजिया मलिक साहब। आइए उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि अब तक की ताजा तरीन खबरों का क्या अहवाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, वैसे ही हैं हम,
जैसी गई थी वैसी आ गई,
वैसे ही हैं, बुद्धि उठा के वैसे ही आ गई।
दो दिन की छुट्टी थी आपकी?
हाँ हाँ हाँ।
फिर
तो अब दो दिन में मतलब है क्या हो जाना था,
और वीकेंड में तो मैं कहा था ना ट्रिक और क्या
ट्रिक और
ट्रीट, तो दिन करीब आ रहे हैं। अब भी
ट्रिक चलेगी,
स्ट्राइक डाउन होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखें अभी तो कुछ हालात ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी वो कहते हैं ना मैं ना मानू हार और सारे बंदे अपने प्लान किए
ईगो के चक्कर
ईगो का मसला एब्सोल्युटली राइट कि वो एब्सोल्यूट पावर होता है ना कि बस एक दिमाग में जब आ जाती है
तो बस फिर एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स राइट
तो मुझे लगता है कि हालात देखें क्या होता है लेकिन ये एससीयू की मीटिंग आज आपके पास धीरे धीरे खबर होगी ऑफ फोर्सेस की तो उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। आप दुनिया के बदलते सूरत हाल देखें शादे जी इंडिया को जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है और इंडिया ने आगे बढ़कर चाइना से जिस तरीके से हाथ मिलाया ये क्या आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा सबक है कि हमें तो वो वैसे ही दोस्त कहता है ठीक है ना हमारे साथ तो चाइना की कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है खुदा ना खास्ता कि कोई वो आप देखें इंडिया के साथ हर चीज में भिड़ने के बावजूद आज जिस तरीके से अभी जो वीकेंड पे जिस तरीके से शी साहब ने और मोदी साहब ने जो मुलाकात की और जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे के साथ जेस्टर शो किया और चीजों को आगे बढ़ाने की बातचीत की
नहीं तो जेस्टर कैसे शो करें मैं तो आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूं लेकिन आप नहीं करना चाहते लेकिन एक सिनेरियो ये होता है कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूं आप भी करना चाहते हैं बहुत ज्यादा इंडिया और चाइना की लड़ाई है तो मोदी जी वहां पे पहुंचे तो चाइना ने भी मिलकर उनको बोला हां जी हम मिलकर
मैं तो इंडिया पाकिस्तान नहीं ला रहा चाहता मैं चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप पे बात करेंगे
पाकिस्तान ने तो हजारों दफा उनको बोला है बिल्कुल ठीक इंडिया को मोदी जी उनके साथ बात ही करने को मैं बार बार कह रही हूं कि मुझे आमिर तुम्हारा दोस्त बनना है तुम कह रहे हो कि मुझे तो बनना ही नहीं है लेकिन जिस वक्त अरफा जी आ जाते हैं फिर तुम कहते हो हां जी मुझे बिल्कुल तुम्हारा दोस्त बनना है ना तो असल में ये है तो अब आपका जो दूसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान को इससे
हम चाइना से नहीं
कि चाइना के साथ
इतना तरीके से रह रहे हैं
लेकिन द थिंग इज के जैसे चाइना ने एक्सप्लेन किया था और जैसे इंडिया ने भी एक पॉइंट पे किया था तो खैर उसका सारा टिल्ट चाइना की तरफ हो गया कि हमारे रिलेशनशिप जो उन्होंने बताया था अमरीका को कि जो आपके साथ है जो बाइडन साहब के जमाने में उनकी स्टेटमेंट थी वो अपनी जगह पे है रशिया के साथ अपनी जगह पे है तो पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट इस वक्त यही है कि जो हमारा रिलेशनशिप जो चाइना के साथ है वो उसके साथ है और जो अमेरिका के साथ है वो उसके साथ है और एससीओ की मीटिंग में भी उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान और चाइना आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं हमें तो कोई तोड़ नहीं सकता बिल्कुल किसी सूरत में हमें नहीं हटा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए कि अगर हमारी अमरीका से यही मैसेज शी साहब ने एससीओ की मीटिंग में
ओवरऑल भी दिया
ओवरऑल
हम किसी के उसको हर्ट नहीं करेंगे
कि हम जो पाकिस्तान नहीं उनके ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली बोला है कि जो पाकिस्तान के दोस्त साथ दोस्ती है वो तो है ही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रशिया या इंडिया के साथ भी दोस्ती नहीं कर सकते हैविंग सेड दैट 4000 किलोमीटर का जो जिस इलाके पे कब्जा करके चाइना बैठा हुआ है एक इंच उससे पीछे नहीं हटा है उसने कहा हाँ जी
हम यही है
यहीं पे रहेंगे ये छोड़ेंगे नहीं हाँ तुमको अब हमारे साथ और अगर चलानी है अच्छा अब इसमें भी आप देख लें चाइना उधर बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं जी हिल नहीं रहे फिर भी मोदी जी तरले कर रहे हैं कि जी हमको आपके साथ दोस्ती करना है और हमको आपके साथ ट्रेड करना है दूसरी तरफ जिस वक्त मुईद जो थे वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इमरान खान साहब के वक्त में जिस वक्त उन्होंने एससीओ की मीटिंग में जाके नया नक्शा बताया था कि जी अब ये नक्शा जो है ये चेंज हो रहा है उस वक्त जो अजीत डोवाल साहब थे जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो गुस्से होकर मीटिंग से ही निकल आए थे तो अभी तो चाइना बैठा हुआ है तो मोदी जी गुस्से होकर क्यों नहीं निकले वहां से यू नो तो ये होता है कि पाकिस्तान के साथ घुस के मारेंगे चाइना के साथ तुम हमारे माई बाप
हो बड़ा रीजन है जो अभी इस बात को बिल्कुल आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा आपसे ही कह रही है देखें इस वक्त चाइना अपनी वो कहते हैं ना 100 साल अपनी चीजों को अब वो चेंज कर रहा है चाइना क्यों इंडिया चाइना के पास जा रहा है और जो मैं बात शुरू कर रहा था
अमरीका उसको आंखें दिखा रहा है
नहीं अमरीका आंखें दिखाने के साथ
साथ बात नहीं करना चाह रहा है
अमरीका ठीक है एग्री यस यू आर राइट लेकिन इसकी जगह और दूसरे एंड मैं थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो पे भी बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें पिछले काफी सामने चीजें आ रही थी हम देख भी रहे हैं इस चीजों को कि चाइना हमने हमेशा देखा है कि वो एक चीप प्रोडक्ट बनाने का यानी कम कॉस्ट में चीप का वर्ड यूज नहीं करता कि कम कॉस्ट में दुनिया भर में लो कॉस्ट पे उसने दुनिया भर में प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनाने के लिए वो चाइना हमेशा मशहूर रहा है अभी अच्छा पाकिस्तान की दोस्ती इंडिया से ज्यादा दोस्ती चाइना की जो है पाकिस्तान से हम सब जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि जी इस दोस्ती को इंडिया जो उस वक्त अपना गोल अचीव करना चाहता है रिगार्डलेस कि उसके साथ तनाव कितना है उसे नजर आ रहा है कि इस वक्त चाइना का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है शायद जी जो मिनिमम वेज के प्रॉब्लम है वहां अभी हो क्या गया है कि जितनी जो लो प्रॉफिट चीजें जितनी चाइना बनाता रहा है पिछले 50 सालों में 30 सालों में वो अब उनके जो मिनिमम वेज है वो अब इस लेवल पर आ गई है कि अब जो बिजनेस ओनर्स हैं जो वहां बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास अब इतना मार्जिन नहीं रहा। फिर दूसरे एंड पे चाइना अब क्या कर रहा है, आप देखें चाइना जा रहा है अब कार मैन्युफैक्चरिंग, BYD लॉन्च करने का मकसद ही ये था कि हाई वॉल्यूम मार्जिन पर जो है वो काम किया जाए, क्योंकि अब चाइना की जो सर्वाइवल है वो अब ये छोटे $2 की चीज, जैसे फर्ज करें कि नाइकी का $25 का शूज मैन्युफैक्चर होता है वो $100 का बिकता है, ठीक है, डॉल बारबी की कह लेंगे जी $1 में वो वहां से मैन्युफैक्चर होती है, वो $10-12 में नॉर्मली बिक जाती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाइना को प्रॉब्लम आ रही है ये इंडिया को बहुत अच्छे से पता है, और इंडिया इज कहते ना कि वो इंडिया भी 1.2 और 1.3 बिलियन की आबादी पे इंडिया भी खड़ा हुआ है, उसके पास लेबर अब भी चीप। इंडिया का जो मोदी जी हैं और जो उनके काम करने वाले हैं, मैं जो बात करने की यहां पर था कि वो हम पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद है वेरी लो कॉस्ट। पिछले आप मुझे आज लिख के रख लिया, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, अगले 15 से 20 साल में आप देखिएगा जितना लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है वो या तो वियतनाम जाएगी, इंडिया जाएगी मैक्सिमम, और बांग्लादेश उठाएगा। हम इसमें बहुत पीछे हैं। मैं पूरी रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान की ये सोच ही नहीं है, उनको इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि यार आप इस वक्त कहते हैं
ये जो मैंने लास्ट मंथ भी जो मेरी खबरें थी उससे पहले भी मैंने कहा था कि ये जो 50% टैरिफ लग गए हैं इंडिया के ऊपर, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम इसलिए उठाएगा क्योंकि जो इनकी कॉस्ट है अब इतनी ज्यादा हाई नहीं रही टैरिफ की वजह से।
यही प्रॉब्लम है ना, हम दूसरे के नुकसान में अपना फायदा ढूंढते हैं हमेशा से, ये दिस इज द मिस्टेक कि हम हमेशा दूसरे के नुकसान में अपना फायदा देखते हैं। हमने
नुकसान हम
ये टैरिफ ना ये चंद लम्हों की बात है।
हाँ,
अभी इंडिया ने कह दिया था ना कि हम टैरिफ को जीरो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि दिस इज टू लेट, लेकिन पॉलिटिक्स में और दुनिया के ट्रेड में देर इज नो परमानेंट दोस्त और नो परमानेंट एनिमी।
हाँ, हम वही बात कर रहे हैं,
लेकिन आज अगर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे हुए तो हम कह दिए हमें फायदा हो गया, इसका मतलब ये होना कि हम
तो आपने कहा कि वो वियतनाम और बांग्लादेश के पास सारा मैन्युफैक्चरिंग जाएगा।
शाजी जी वो लो कॉस्ट की वजह से जा रहा है, टैरिफ की वजह से नहीं जाएगा।
टैरिफ की वजह से उनकी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, इंडिया में ऑलरेडी नुकसान देखना,
लेबर चीप है, लेबर बहुत चीप है,
लेकिन उनका नुकसान, इसीलिए वो जो चाइना के साथ अब इतनी मुहब्बतें बढ़ाई जा रही है ना, उसकी वजह यही है कि भाई तुम हमसे चीजें ले लो और बेशक उसके ऊपर मेड इन चाइना का ठप्पा लगा के करो, क्योंकि अमरीका से उनके कैंसल हो रहे हैं सारे के सारे जो वो चीजें भेजते थे, ज्वेलरी उनके सेक्टर अब सफर होना शुरू हो गया, उनके
ये भी इफेक्ट
है, उनकी जो जूतियों के जो सेक्टर, ये सारे का सारा इफेक्ट हो रहा है, इसलिए वो भागे भागे जे हैं कि भाईजान साढ़े को, जैसे कि इंडिया का भी करता था, पिंक सॉल्ट सारा पाकिस्तान से उठाता था, मेड इन इंडिया का
बासमती राइस,
हाँ तो सारी दुनिया में भेज, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू कि भाईजान चीजें हमसे ले लो, मेड इन चाइना का ठप्पा लगा के आप करो, क्योंकि आपकी चीजों को खपत फिर भी वहां पर मिल जाएगी। इनके आपको पता नहीं है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हुए हैं जस्ट दिस वीकेंड, सिर्फ इस वीकेंड के ऊपर मिलियंस रो रहे हैं वहां पे मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर, एंड दैट इज व्हाई दे आर देयर एंड दे आर टेलिंग देम कि जी हमसे चीप लेबर की जो आप बात कर रहे हो चीजें ले लो, हम भी आपको सस्ती दे देंगे, आप हमारा बेच सके, हमारा अगर एक तरफ से नुकसान हो रहा है, अगर चीजें अमरीका नहीं जा रही तो आप हमसे ले लो।
चलो चीजें ये भी एक पहलू है, यू आर राइट, एब्सोल्यूटली यू आर राइट, ये तो बात हो गई कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इस वक्त जो इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है और उसको ये अपॉर्चुनिटी नजर भी आ रही है कि किसी तरीके से जो फैक्ट्रीज इस वक्त लगी हुई है चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं उनको उठाकर आप इंडिया में लेकर आया जाए, क्योंकि इसी वजह से कि फर्ज कर लें जो चाइना में अगर $1 अगर लेबर एग्जांपल लूं तो इस वक्त
चाइना को उसका नुकसान होगा, क्योंकि अगर ट्रंप साहब को पता चला कि ये इनकी चीजें जो है वो इंडिया की फैक्ट्रियों में बन रही है, अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट को उन्होंने
शायद वो अमेरिकन चीजें नहीं है ना,
हाँ
वो अमेरिकन कंपनी नहीं है,
जा नहीं सकती, तो चाइना को नुकसान है ना उसका,
नहीं चाइना की आप फर्ज कर लें चाइना जो है वो बाद भी बना रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ नाइकी का शूज
चाइना में रहकर अगर बना रहा है, अगर इंडिया में रहकर बनाएगा तो उसको 50% जो है वो टैरिफ को फेस करना,
ये देखें शरद जी मैंने आपसे कहा ना, मैंने वर्ड यूज किया था कि अगले 15 और 20 साल,
नहीं 15-20 क्या 4 साल के बाद पॉलिसी चेंज अमेरिका की,
एग्जैक्टली तो ये टैरिफ इज गॉन नाउ,
ये तो सिर्फ 4 साल की गई,
ये यस
जस्ट 4 इयर्स, नॉट 15 साल,
तो जो पॉलिसीज बनती हैं वो 3 इयर 4 इयर्स पे नहीं बन रही है। इंडिया इसको बहुत आगे देख रहा है, इंडिया देख रहा है अगले 15 साल में 20 साल में
ये टफ है, जब तक
और चाइना ये रख के लिख लें, चाइना आने वाले 15 सालों में 20 सालों में ये जो लो मार्जिन प्रॉफिट की जो चीजें हैं जिसमें गुड़िया बनाने से लेके एक बैग बनाने से मोबाइल का कवर बनाने से लेकर चाबियां बनाने के लिए छोटा जो भी कंज्यूमर आइटम्स हैं जो कि लो प्रॉफिट्स हैं वो एक्सपोर्ट मतलब वो टेक्नोलॉजी वो सारी चीजें अपने मुल्क से बाहर निकाल देगा क्योंकि उन्हें पता है कि हमने क्योंकि अपनी आवाम को
बड़ी गेम खेलनी है
हाई प्रॉफिट मार्जिन में जाना
हाई प्रॉफिट मार्जिन में जाना अब ये छोटे छोटे रुपए रुपए की चीज नहीं है पेशनी
आप देखें ना जो BYD है वो लार्जेस्ट इस वक्त जो है वो बैटरी प्रोवाइडर्स है दुनिया भर में BYDs
फॉर दैट मैटर टॉयज भी दूसरी चीज भी लेकिन तुम्हारी बात वही है कि अब वो एक रुपए की गेम नहीं करना चाहते
वो नहीं करेंगे वो $100 पे जाएंगे क्योंकि उनका उसमें मार्जिन नहीं आ रहा
उनको समझ आ गई है कि हमको मार्जिन बड़े चाहिए
तो अब
ये चिन्नी मिन्नी की जो काम है
ऐसा तो होगा नहीं कि जो नाइकी के शूज बन रहे हैं वो बनना बंद हो जाएंगे
नहीं 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 वो सियालकोट की किसी फैक्ट्री को दे देंगे बोलेंगे कि तुम मुझे
वो वियतनाम भेज देंगे मैक्सिको भेज देंगे इंडिया भेज देंगे
तुम मुझे $10 का बना के
पाकिस्तान इस वक्त नजर नहीं आता कि उसकी इस तरह की कोई पॉलिसी है सामने नहीं आ रही कोई फैक्ट होता है ना कि जैसे इंडस्ट्रियल जोन नहीं बन रहे हमारे मुल्क में तो वो कहते हैं ना कि पार्क व्यू और दूसरा की रावी के ऊपर कंस्ट्रक्शन कंपनी वो हाउसेज बना दिए हमने और अब आप कहते हैं अब आप एक बात है ना कि अभी बात हो रही थी कि डैम बन मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एक डॉक्टर साहब थे वो साइंटिस्ट हैं वो उस पर काम करते हैं पाकिस्तान से उनकी मैं क्लिप देख रहा था उन्होंने कहा कि डैम बनाना ठीक है जरूरत है लेकिन सिर्फ डैम बनाने से हम ये फ्लडिंग से नहीं बच सकते हमें अपना जो नहरी निजाम है जो नहरों में
कचरे
जो गोरा उस वक्त से बना के गया होता ना हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया हमने उसके ऊपर कॉलोनियां बना दी हमने उसके ऊपर मट्टी भर आ गई है उसके अंदर हमें नहरी निजाम को खोलना पड़ेगा ये डैम बनाने से सिर्फ लोग जो बातें करते हैं ना जी आज बादशाह डैम होता मोहम्मद डैम होता दूसरे डैम होते
एनक्रोचमेंट स्कीम ही है ना आपने उसके ऊपर घर बना दिए हैं
भाई कॉलोनीज बन गई
हैं नहरों के जो रास्ते थे उनके ऊपर आपने घर बना दिए हैं सारे
और मैं दरिया रावी का पढ़ रहा था कि पुरानी हिस्ट्री
रावी में भी चनाब भी
दरिया रावी की हिस्ट्री अगर आप पढ़े मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था बस इसको फिर हम खबरों में चलेंगे दरिया रावी एक ऐसा दरिया था जो समंदर जैसी लहरें मारता था और यूं समझ ले मुगल और उनसे पहले के दौर की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था यहां पर शिपिंग कंपनीज थी या शिप बनते थे और दूसरा यूरोप से सारी जो वो कहते हैं ना ट्रेड वो रावी में जहां चलते थे शिपिंग
गोरा की ट्रेड चलती थी
फिर आज उस रावी में जो है वो कहते हैं आप हाल देख लें जाके तो दुख होता है
पिंडी का नाला लही का बताया था कि किसी जमाने में वो फ्रेश वाटर वो था नाला था उसमें मछलियां तैरती थी इस वक्त आप जाके देखे कचरे से भरा और वही नाला लही जो है अब उबल के सारे
सामने सारा तो हमने इन चीजों को देखना पड़ेगा हम सिर्फ
तो आप हम क्या देखेंगे अभी जो मरियम नवाज साहिबा जो 50,000 बंदों को लेकर वहां पे गई हुई थी जापान के अंदर आपने इंडिया का अगर पवेलियन देखा हो और अगर आपने पाकिस्तान का देखा हो कोई 2 इंच का आपका वो जो था उसके अंदर आपने जो है सिर्फ रेड नमक रखा हुआ था जबकि वो जो इंडिया का जो
पवेलियन
था उसके अंदर 50,000 उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स रखे नहीं नहीं आपके पास बेतहाशा है मिस मैनेजमेंट होती है आप अपनी चीजें
प्रेजेंट नहीं कर
प्रेजेंट नहीं करते जैसे आइडियाज आप करते हैं ना आइडियाज एग्जीबिशन करते हैं सारा अपने आपने अपना मिलिट्री इक्विपमेंट रखा होता है दुनिया सारी आके देखती है इम्प्रेस होती है आपसे लेती है इधर उधर इंडिया ने रेस्टोरेंट्स खोले हुए थे उसके अंदर कि भाई अगर तुम थक टूट गए हो तो वो तुम उधर आके खा सकते हो उधर बैठो उधर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो इन्होंने कोई प्रोडक्ट्स अपने रखे
नहीं रखते
तो ये विजन की बात
है विजन की
एक चीज जो है आप अच्छी कर लेते हैं दूसरी जैसे मैंने आइडियाज का एग्जांपल दिया आइडियाज की एग्जीबिशन तो मैं खुद
अटेंड
कर रही थी अबू धाबी में क्या इन्होंने जबरदस्त अपना डिस्प्ले किया होता था और लोग इतने इम्प्रेस होते थे
लेकिन हम ज्यादातर असला बेचने में लगे रहते हैं प्रॉब्लम ये शाजा जी हम टेक्नोलॉजी नहीं बेचते हमको प्रोडक्ट नहीं बेचते
आपका ये जो अभी जापान में हुआ था उसमें आप अपना फुटवेयर रखते अपना कपड़ा रखते
हमारे स्पोर्ट्स दुनिया भर में जाता है शायद जी
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे सैमसंग वाले जो थे आपने किसी जमाने में करी सॉरी नहीं क्या सीमेंस वाले से लेते होते थे
सर्जिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स
इंस्ट्रूमेंट लेते थे आपके तो फुटबॉल्स होने चाहिए जो फीफा में खेले जाते तो आपको इस तरह की कपड़े आपके जो शलवार कमीज है या कॉटन के जो कपड़े हैं वो इतने अच्छे हैं दुनिया सारी में वो मशहूर हैं वो आपको रखने चाहिए थे और आपको अपने स्पोर्ट्समैन जो है उनकी तस्वीरें लगानी चाहिए थी आपको बताना चाहिए था हमारा कितनी रिच लेगेसी है
तो मैं वही बात है ना हमारी तो इंटेंशन नहीं है हमारी जो
और उसके वो लगाते और
पॉलिसीज है ना बनाने वालों की वो
वर्ल्ड रिनाउन ये भैन लोग हैं
मेरा मानना ये कि ठीक है इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रही है लेकिन दूसरे की प्रॉब्लम या नाकामी से अपना फायदा ना देखें अपना फायदा अपनी जमीन को यूज करते हुए
एससीओ मीटिंग की बात
और एससीओ मीटिंग में भी देखें ना
गया वहां पे एससीओ में क्योंकि अमरीका उसको हार्ड टाइम दे रहा है
शायद जी हार्ड टाइम के साथ साथ दे आर वेरी स्मार्ट दे आर वेरी स्मार्ट पीपल दे लव इंडिया बेसिकली मैं वर्ड यूज करूंगा कि अगर मोदी उनके लीडर्स जो हैं उनके जो वहां के नहीं लोग भी मोहब्बत करते हैं और लीडर्स भी जो हैं वो दे आर सिंसियर विद देयर कंट्री इट्स कॉल्ड इंडिया लेकिन हम जो है वो देख लें ना कि 2002 का फ्लड ले लें, 2005 का फ्लड लें, वही तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं, वही कश्तियों में बैठ के घुमा जा रहा है, सर्वेलेंस हो रही है, रोना गाना हो रहा है, ये दुनिया हमारी इमदाद नहीं कर रही। हम कब तक इन चीजों से जो है वो
लड़ते रहे। 70s में भी जो एक फ्लड आया था, आपको पता है, ये तो आपको शायद अंदर की पता नहीं खबर पता है कि नहीं पता है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो अभी यूनुस साहब के आने से ये चीजें सारी हश अप हो गई हैं, क्योंकि वो जरा पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वरना बांग्लादेश ने कहा था कि 1970s में जो ये फ्लड्स आए थे बंगाल में और आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया से आए थे, उसमें हमारा हिस्सा दो क्योंकि आपने हमारे पे स्पेंड नहीं किए थे।
जी जी, वो अभी इसहाक डार साहब जब गए थे तो उन्होंने यही मुद्दा,
उन्होंने कहा जी वो इन्होंने तो बड़े प्यार मोहब्बत से किया ना, वो हसीना वाजिद तो बड़े जोर से कहती थी, दो
कंसेंट तो है ना इश्यूज तो जो है
बंगाल में जो आया था और उसके लिए सारी दुनिया ने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे, आपने उसमें से चवानी हमारे पे खर्च नहीं किए, दो में हमारा वो पैसा जो आया था हमारे लिए आया था। तो
चलिए जनाब खबरों की तरफ बढ़ते हैं और खबरों के हमारे स्पॉन्सर्स हैं इस वक्त, आपको एक टेलीकॉम कंपनी के बारे में बताते हैं, बीवर टेलीकॉम। और बीवर टेलीकॉम क्या है जनाब, अगर आप ये फैमिली के साथ या आप अकेले भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, आप उमरे के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, कहीं भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये आपको डाटा प्रोवाइड करता है, यानी जो आपका रोमिंग डाटा है वो प्रोवाइड करता है सर्विस। इनकी ई सिम टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको फिजिकल सिम चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, आपने बहुत आसानी से इनकी वेबसाइट विजिट करनी है, बीवर टेल, ये वो का चपटी दुम वाला आता हो, कहते चपटी दुम वाला होता है लंबी चपटी दुम वाला जो बीवर है वहां अपना दोस्त वही, तो beavertel.com beavertel.com इनकी वेबसाइट है और वो आपको बहुत ही मतलब कह रहे ना कि मैंने इनके रेट चेक किए इनकी वेबसाइट पे, बहुत ही जबरदस्त रेट। यूजुअली हमारा फाइडो, रॉजर्स, बेल, अगर आप रोमिंग पर जाते हैं या तो इवन यहां से आप अमरीका भी चले जाएं तो आपको $13 प्लस HST या $12 HST आपको पर डे आपको डाटा पड़ता है और वो भी चंद GB का होता है। इनकी अगर आप वेबसाइट जाएंगे तो आपको मतलब समझ लेंगे 20-23 डॉलर में आपको इनके कुछ प्लान्स वैसे हैं जो 6-7 दिन के मतलब एक वीक के प्लान्स आपको $30 में आपको डाटा मिल जाएगा, तो विच इज वेरी गुड डील। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे घूमने फिरने जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तो आपको बेस्ट इंटरनेट का रेट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे अगर आप इनकी ई सिम ले लेंगे। तमाम ही फोन्स में अब तो ई सिम की फैसिलिटीज है, जितने नए फोन्स आ रहे हैं चाहे वो सैमसंग के हों या एप्पल के हों, उनमें आपको ई सिम की फैसिलिटीज मिलती है, आपको फिजिकल सिम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस कोड डालना है और उसके बाद आपका डाटा जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपको लगेगा आप कहीं भी बॉर्डर क्रॉस करने लगे तो आपने अपने फोन से डाटा रोमिंग डाटा पर्सनल लोकल को बंद करना है और आपने इनकी सिम्स को ऑन कर लेना है, तो आपको इंटरनेट जो है वो 24/7 आपको अनलिमिटेड इंटरनेट बहुत ही मुनासिब दाम में मिल जाएगा। आप इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए beavertel.com beavertel.com और यह मंसूर साहब होते हैं और इनका नंबर है 416-243-9836 416-243-9836 इनका नंबर है। कॉल करें या विजिट वेबसाइट करें तो रेफरेंस जरूर साजो आवाज का दीजिएगा। इसके अलावा जनाब आपके शहर ब्रैम्पटन में आने जा रहे हैं कौन जनाब, जावेद अख्तर साहब आने जा रहे हैं और ये इवेंट जो है वो उसकी एक टिकट है, टिकट इसकी है $100 और ये इवेंट होने जा रहा है कोर्ट यार्ड मैरिट होटल ब्रैम्पटन में और एड्रेस है 90 बिस्केन क्रिसेंट ब्रैम्पटन। तो जावेद अख्तर साहब जो है आ रहे हैं, इनका टिकट है $100, वो अपनी बुक लॉन्च के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप इस इवेंट में शरीक होना चाहते हैं और 1-to-1 बातचीत भी करना चाहते हैं जावेद अख्तर साहब से तो बिल्कुल अशफाक साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। अशफाक साहब का मैं ईमेल एड्रेस आपको दे देता हूं, इस पर आप ई ट्रांसफर भेज के उनसे डिटेल भी ले सकते हैं, ASHFAQ अशफाक हुसैन HUSSAIN canada@gmail.com अशफाक हुसैन canada@gmail.com। अगर आप जावेद अख्तर साहब से मिलना चाहते हैं तो आप जो है वो अपनी टिकट जो है वो बुक करा सकते हैं अशफाक हुसैन साहब से। ठीक हो गया जनाब, इसके अलावा एक और स्पॉन्सर के देते हैं फिर हम शादी की तरफ पढ़ते हैं, अरहम रेनोवेटर्स जनाब। अरहम रेनोवेटर्स, अगर आपने अपने घर की रेनोवेशन करानी है, इसके अलावा अगर आप में बिल्कुल बहुत से लोग हैं जिन्होंने पुरानी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं अक्सर उसको फिर बिल्कुल गिराकर नई प्रॉपर्टीज उसको बनाते हैं, तो अगर आप अपने कस्टम होम बनाना चाहते हैं या होम एडिशन कराना चाहते हैं तो अरहम होम बिल्डर एंड रेनोवेटर्स से राब्ता कीजिए, या आपको किचन भी बना के देंगे, बाथरूम्स आपको टाइल्स लगा के दे सकते हैं, आपकी बेसमेंट जो है वो भी रेनोवेट कर सकते हैं, इसके साथ साथ अगर आपने बेसमेंट को लीगल कराना है तो भी नदीम साहब आपको इसमें हेल्प करके दे सकते हैं। कॉल कीजिए 416-841-5825 416-481-5825 अरहम रेनोवेटर्स एंड बिल्डर्स, आपके घर की किसी भी किस्म की रेन्यूवेशन के लिए आप इन्हें बिल्कुल कॉन्टेक्ट करते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस है और तमाम पूरे जीटीए में इनकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये अरम रेन्यूवेटर नदीम साहब। अगेन इनका नंबर 416-841-5825। जी शादी जी।
हाँ जी, ओके जी। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह आपको पता ही है कि ऑल स्टेट के साथ है और बहुत सारे आपके पैसे बचाते हैं अगर आप उनसे इंश्योरेंस लेते हैं। दो गाड़ियां और एक घर अगर आपके पास है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो उनका नंबर है 6472903773। अच्छा खाना खाना है तो आपको जाना पड़ेगा फैसल चट्ठा के पास। दो उनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसिसागा में और एक ओकविल में। तो आप कहीं पर भी टेकआउट भी कर सकते हैं और बैठ के भी खा सकते हैं। तो उनका नंबर है 6477744888। बंडल डील्स अगर आपको चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आप सुल्तान भाई से बात कर सकते हैं। सुल्तान भाई जो है वो होते हैं 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट के ऊपर और आपको मार्केट से सस्ते देते हैं चीजें। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 9054502828। और अगर आपके दांत खराब हो गया तो डॉक्टर नाजिया रहमान के पास जाएं। डॉक्टर नाजिया रहमान जो है उनके 3 डेंटिस्ट्री क्लिनिक्स हैं, डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा, डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे और ब्रैम्पटन के अंदर भी उनकी जो है 65 मॉन्टपेलियर जो स्ट्रीट है उसके अंदर भी और 150 येलो एवंस बुलेवार्ड के ऊपर भी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं 9058721100। और जनाब अगर आप चाहते हैं आपका महंगा वाला ट्रक चलता ही रहे, खराब ना होए, तो QTL क्विक ट्रक ल्यूब के पास आप जाए और ये जो है बहुत अच्छे ऑथेंटिक ऑयल्स डालते हैं, मैकेनिक भी बहुत जबरदस्त है उनके, देखते ही समझ जाते हैं कि आपके इंजन का क्या प्रॉब्लम है। तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं 1519-622-0660। इसके अलावा अगर आपको ज्वेलरी चाहिए, कोई आपके फैमिली में इवेंट आ रहा है तो आप असलम भाई के पास पायल ज्वेलर्स पे जाए। उनके पास दुबई सिंगापुर की बहुत अच्छी ज्वेलरी है और 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव ब्रैम्पटन के अंदर है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं 9057907879। ठीक है जी, हम आपको पहली खबर देते हैं जी। ऑन्टारियो गवर्नमेंट ने आज लेबर डे के ऊपर यह अनाउंस किया है कि वो इंटर प्रोविंशियल बैरियर्स जो है उसको खत्म कर रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इन्होंने दी है ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा जी कि इन डिमांड प्रोफेशंस जो हैं, जैसे कि उसमें इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनको जो है अब हम उनके लिए बैरियर्स हटाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1st 2026 सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो हैं दूसरे प्रोविंस से वो ऑन्टेरियो के अंदर काम कर सकेंगे विद इन 10 डेज। और उसके लिए अभी उनको मंथ्स एंड मंथ्स अभी जो करंट सिस्टम है उसमें वेट करना पड़ता था। ये जो रूल आज का आया है एज ऑफ राइट रूल्स, ये कहता है कि तकरीबन 50 रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं एंड 300 सर्टिफिकेशंस जो हैं वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर पीटर बेथलन फेल्वी जो है उन्होंने कहा कि ये हेल्प करेगा लेबर गैप्स में, स्ट्रेंथन करेगा हमारा इकोनॉमी। ऑन्टेरियो ने साइन किए हैं 10 डील्स विद अदर प्रोविंसेस और टेरिटोरीज के फ्री मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड गुड्स होने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर आज काफी जो है वो एक्सपर्ट्स का कुछ शोर भी आया है। वो कहते हैं जी कि ऑलरेडी ऑन्टेरियो के जो रहने वाले हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, तो आप बाहर के जो प्रोविंसेस से बुलाएंगे तो उनको बुलाने का इतना जो है वो क्या है। तो ये चीज जाहिर है कि ये हीट जनरेट जरूर करेगी। गुड्स की ठीक है, विदाउट बैरियर जो है वो मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर आप जॉब्स भी अब इधर दूसरे प्रोविंस के लोगों को देना शुरू कर देंगे तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। यहां पे आपको पता है हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था जिसमें लोगों ने आके कहा था उनके बच्चों को एक एक साल से जॉब्स नहीं मिल रही है यहां पे। तो ये जो है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये बहुत ही इन डिमांड प्रोफेशंस हैं और ये स्पेसिफिक इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिशियंस। तो अब मुझे पता नहीं है कि जिन लोगों के फोन आए थे उनके बच्चे इनमें से कुछ है कि नहीं। तो अब बहरहाल एनीवेज पता चलेगा जो है नेक्स्ट ईयर से। फोर्ड गवर्नमेंट जो है जी वो बहुत थ्रेटन कर रही है टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑन्टेरियोज रियल एस्टेट रेगुलेटर, रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ ऑन्टेरियो, जिसको रिको बोलते हैं। ट्रम्प डग फोर्ड साहब जो है उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आज गुस्से में थी क्योंकि वो कहते हैं जी कि एक ऑडिट बिठाना पड़ेगा हमको। ये जो स्कैंडल एक आ गया है आई प्रो रियालिटी का, उसके लिए इसके जो को फाउंडर्स हैं उनको एक्यूज किया गया है ऑफ मिस यूजिंग अबाउट $10 मिलियन फ्रॉम ट्रस्ट अकाउंट्स जो कि क्लाइंट डिपॉजिट्स और रियल्टर कमीशंस के लिए था। रिको जो थी उसने अलाउ किया था ब्रोकरेज को टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग फॉर मंथ्स ड्यूरिंग विच $720 मिलियन जो है उसके ट्रांजेक्शन्स हुए थे थ्रू कॉम्प्रोमाइज अकाउंट्स। रियल्टर्स कहते हैं कि उनका अब जो है एक्सेस नहीं रहा है इन फ्रोजन डिपॉजिट्स और कमीशंस के लिए और उसकी वजह से जो उनके क्लाइंट्स हैं वो भी कंप्लीट परचेज अब नहीं कर सकते हैं। रिको जो है उसका रजिस्ट्रार उसने रिजाइन किया था लास्ट मंथ यानी कि अगस्त में, और लॉ फर्म डेंटॉन्स जो है उसको हायर किया गया है टू रिव्यू कि ये केस सारे कैसे हैंडल किए जा रहे थे. मिनिस्टर स्टीफन क्रॉफर्ड जो है उनका कहना है कि ऑन्टेरियो अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर टू टेक ओवर रिको अगर जो है ऑडिट ने ये प्रूव कर दिया कि ये सब चीजें वाकई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, अनसेटिस्फैक्ट्री चीजें थी. ऑन्टेरियो जो है उसके जो पांच लार्जेस्ट रियल्टर एसोसिएशन हैं उन्होंने बिल्कुल गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है इसके अंदर उसको जो है वो बैक किया है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि अब सामने आया है. तो अब इसकी सारी वो प्रोब आएगी सामने, इन्वेस्टिगेशन आएगी, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे. एनडीपी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह साहब, आपको पता ही है कि जिस वक्त वो इलेक्शन ट्रेल में भी अप्रैल पे थे तो वो बार बार लोगों को कह रहे थे कि हम आपके साथ और वर्कर्स के साथ खड़े हुए हैं और अब सिक्स मंथ्स हो गए हैं फेडरल इलेक्शंस को हुए हुए. तो वो विंडसर के ऑटो प्लांट पे जो थे वो जब गए तो वर्कर्स जो थे उनको ज्यादातर उस वक्त, यानी कि मैं बात करी उस वक्त जब गए तो उन्होंने कहा जी हम वर्कर्स के साथ खड़े, तो वर्कर्स ने उनको बिल्कुल इग्नोर किया था क्योंकि ट्रेडिशनली जो लोग हैं वो फेवर करते थे कंजर्वेटिव को और इसलिए एनडीपी को बिल्कुल शट डाउन कर दिया गया था. बड़ा यूनियन हैवी जो राइडिंग्स थे और उसमें ये उनको बताया गया था कि यूनियन की सपोर्ट आपके साथ नहीं है. सेनेटर हसन यूसुफ जो है वो फॉर्मर कनेडियन लेबर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि जो 4 मिलियन यूनियनाइज्ड वर्कर्स कनाडा के अंदर है वो उनको पार्टीज जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं. पास्ट में लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट किया था टुवर्ड्स लेबर और एनडीपी जो थी वो स्ट्रगल करती रही कि वो लेबरर्स के साथ कैसे कनेक्ट करें. इंटरिम एनडीपी के लीडर डॉन डेविस जो हैं उन्होंने कहा जी कि पार्टी को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल्स पे काम करना पड़ेगा ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके वर्कर्स को जो कि 25% जिसमें से हिस्टोरिकली कंजर्वेटिव्स को वोट करते हैं. आज जगमीत सिंह साहब ने कहा है कि नहीं, एनडीपी जो है आपकी पार्टी है और ये वाहिद पार्टी है जो शोल्डर टू शोल्डर आप वर्कर्स के साथ खड़ी हुई है, यानी कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है टैरिफ से आगे है तो हम बिल्कुल आपको आपके जो है साथ खड़े हुए हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जो है वो स्टोरी है और इसके मुताबिक जो है ट्रंप साहब जो हैं वो इंडिया इस साल नहीं आ रहे हैं क्वाड की मीटिंग में और इसके अंदर आपको पता ही है कि अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं लेकिन वो कह रहे हैं जी कि चूंकि टाइज बहुत ज्यादा मोदी जी के साथ खराब हो गए हैं तो इसलिए वो इंडिया नहीं आएगी. और ये खराब इसलिए हुआ है कि ये दो तीन चीजों की वजह से है. एक तो जो है वो इंडिया जो है बिल्कुल भी टैरिफ्स जो है वो नीचे नहीं कर रहा था, अब जबकि उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि हम कट कर रहे हैं तो ट्रंप साहब ने कहा जी कि इट्स टू लेट नाउ. और इसके साथ साथ जो है कोई 25-30-40 बल्कि ट्रंप साहब जो है वो कहा है उन्होंने कि जी ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी और 7 तैयारे शायद मैंने सुना है कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए थे और ये लड़ाई तेज हो रही थी और फिर मैंने इनको फोन किया और मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड बिल्कुल बंद कर देगा यानी कि अमरीका, तो तुम लोग ये लड़ाई बंद करो. तो पाकिस्तान ने तो बड़ा 1000 दफा शुक्रिया अदा किया है ट्रंप साहब का लेकिन अब मोदी जी इस बात को मानने कोई तैयार नहीं है कि नहीं जी नहीं उन्होंने तो नहीं ब्रोकर कराया, हमने डीजीएमओ लेवल पे बात की थी. इसके अलावा वो पाकिस्तान ने जिस तरह उनको नोबेल प्राइज के लिए किया, अब ट्रंप साहब कहते हैं कि इंडिया भी मुझे जो है वो नोबेल प्राइज के लिए, पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे, ये भी इंडिया ने ना कर दिया है. तो अब इस चीज की जो है बहुत ज्यादा जो है तकलीफ है जाहिर है कि अमरीका को, ट्रंप साहब को, और उन्होंने 50% ड्यूटीज जो हैं वो इंडियन गुड्स के ऊपर लगा दी हैं. आज जो वहां पे एक इंडिया में बहुत बड़ी जो एनालिस्ट हैं वो जिनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस पर उन्होंने कहा जी कि ये इस चीज को ये टैरिफ ना समझें, ये तकरीबन आप यही समझें कि आपके ऊपर अमरीका ने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया है. 50% इज टू मच. और एक्सपोर्टर्स जो हैं इंडियन उन्होंने आज कहना शुरू कर दिया है कि टेक्सटाइल, सी फूड और ज्वेलरी जो है उसमें सैकड़ों ही ऑर्डर्स जो है अमरीका की तरफ से कैंसिल किए गए हैं और वो कहते हैं जी कि इतनी ज्यादा कैंसिलेशंस हैं कि अब इंडिया के अंदर जॉब लॉसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि कुछ जो स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, जो स्मॉल कारखाने थे छोटे छोटे, उनको तो शायद शट डाउन ही करना पड़े. तो काफी जो है वो मुश्किलें इस वक्त इंडिया में हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि एससीओ में बड़े इंडिया ने प्यार मोहब्बत दिखाया इस दफा चाइना को, उन्होंने कहा पायान कोई नहीं, साड़ी जमीन पे भी बैठो, सब कुछ करो, ट्रेड करो साड़े नाल, है जी, क्योंकि आज काफी एनालिस्ट जो हैं इंडिया में वो कह रहे हैं कि हालत काफी ट्रेड की पतरी है क्योंकि ऑर्डर्स कैंसिल होते जा रहे हैं, है ना, अगर ऑर्डर्स वो गो थ्रू हो जाते तो फिर दूसरी बात थी, नहीं हो रहे हैं. ट्रंप साहब जो है जी वो अब करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देंगे जिसमें वो मैंडेट करेंगे कि वोटर आईडी जो है वो सारे वोटर्स के पास होनी चाहिए और वो कहते हैं जी कि वो बैन करेंगे मेल इन वोटिंग अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही सीरियसली इल है या कि कोई मिलिट्री पर्सनल जो कि मुल्क के अंदर नहीं है वो बाहर है। वो कहते हैं जी मैं ये एंड करूंगा यूज ऑफ वोटिंग मशीन्स आल्सो इन फेवर ऑफ पेपर बैलेट्स और हैंड काउंट्स। वो कहते हैं जी कि ये मशीनों के ऊपर मेरा कुछ इतना एतबार नहीं है एंड इट इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर जो पुश है इनकी कि वो रीशेप करना चाहते हैं यूएस इलेक्टोरल सिस्टम को। उन्होंने कहा जी कि आपको पता ही है कि 2020 में भी उन्होंने कहा था कि ये सारा झूठा है इलेक्शन, ये बाइडन साहब जीते नहीं है और ये है वो है। तो जाहिर है कि वो उनका नैरेटिव तो है ना कि मेरे से स्टील किया गया था, मेरे मुझे इतने वोट मिले मैं कैसे नहीं जीता। तो इससे पहले भी इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था मार्च में जिसमें कि उन्होंने कहा था कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप देना पड़ेगा आपको टू वोट, लेकिन जाहिर है कि उस वक्त तो जज ने इनकी जो ये चीज थी उसको ब्लॉक कर दिया था और कहा था कि फेडरल इलेक्शन रूल्स जो हैं वो हर जो मुल्क की स्टेट है और कांग्रेस जो है वो सेट करती है, अमेरिका का प्रेजिडेंट सेट नहीं करता है। लेकिन आज जो है ट्रंप साहब ने फिर से कहा है कि ये जो 2026 के मिड टर्म पोल्स आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले जो है ये टारगेट चेंजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमास ने बिल्कुल स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है कि यूएस का जो वीकेंड के ऊपर प्लान ऐसे जो आ रही थी सामने बात कि शायद जो है अमेरिका गाजा को जो है यूएस ट्रस्टीशिप में लेना चाहता है फॉर 10 ईयर्स और रीलोकेट करना चाहता है उसके 2 मिलियन रेजिडेंट्स को या तो बाहर या रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में, जिसकी के बाद आपको पता ही है कि ट्रंप साहब ने बेशुमार दफा कही है कि ये जो अरब कंट्रीज हैं इनको एब्जॉर्ब कर लें क्योंकि गाजा का हालत बहुत खराब है, जब तक ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता ये यहां से जाएं, जब रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ये वापस आए। तो जाहिर है अब ये तो वो मानने को पैलेस्टीनियंस तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं जी हम अपने खंडरों पर भी बैठे रहेंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट आई थी और इसने कहा जी कि ये अब कहा जा रहा है कि हम इसको बिल्कुल गाजा को ट्रांसफॉर्म करेंगे और टूरिज्म और टेक्नोलॉजी का हब बनाएंगे। हमास ने कहा कि यह बिल्कुल वर्थलेस और अनजस्ट आइडिया है और यह बिट्रेयल है पैलेस्टीनियंस के साथ क्योंकि गाजा और पैलेस्टीनियंस इनसेपरेबल पार्ट्स हैं, ये हमारा होमलैंड है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ आज उन्होंने वेलकम किया जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जीनोसाइड स्कॉलर्स है, इनमें दुनिया सारी से जो जीनोसाइड के ऊपर जो जिनकी रिसर्च है जो स्कॉलर्स हैं वो उन्होंने बिल्कुल क्लासिफाई किया है कि इसराइल के जो एक्शंस गाजा के अंदर हैं वो जीनोसाइड हैं, जिसमें कि बहुत सारे वो लोग भी हैं जिन्होंने कि एक्चुअली जीनोसाइड जो है वो देखा हुआ है या उसके हॉरर्स जो हैं वो उसके सुने हुए हैं उसके बारे में। और वो कहते हैं जी कि जो है ये बिल्कुल गलत कर रहा है। अब ये जिस वक्त रिपोर्ट आ रही थी और ये बात हो रही थी और उस वक्त जो है इसराइल ने जो है ऑर्डर दिया अपनी मिलिटरी को कि अब आप टैंक्स लेके गाजा के अंदर एंटर हो जाए और जगह जगह पे उन्होंने डेटोनेट किए आज एक्सप्लोसिव्स और एरियल स्ट्राइक्स किए और आज भी सैकड़ों लोग इस पे मरे हैं। जो हमने आपको फ्राइडे को जो स्टोरी बताई थी कि एक 30 फ्लोटिला फिर से जो है वो गाजा की तरफ जाना चाहता है जिसके में सारी दुनिया से जो लोग थे वो थे, उसको वापस कर दिया गया था क्योंकि वो वेदर बहुत ज्यादा खराब है तो वेदर के खराब होने की वजह से वो गाजा में नहीं पहुंच सका है। तो उसके ऊपर जो है फ्राइडे की स्टोरी का अपडेट ये है। तकरीबन कोई 250 मीडिया आउटलेट्स फ्रॉम 70 कंट्रीज जो हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट किए हैं अपने मुल्कों में और ये जो गाजा के अंदर इसराइल जर्नलिस्ट को मारता चला जा रहा है इसके ऊपर जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये एक रिपोर्ट निकाली है पूरी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वालों ने और उन्होंने कहा है जी कि अक्टूबर 7, 2023 से अभी तक 220 जर्नलिस्ट जो है उसको मारा जा रहा है, लेकिन अल जजीरा इस नंबर को डिस्प्यूट करता है। वो कहता है कि नहीं, इसराइल ने 278 जर्नलिस्टों को 22 मंथ्स में मारा है जिसमें से कि 10 तो उसका अपना खुद का स्टाफ थे, अल जजीरा के स्टाफ मेंबर्स थे। और ये जो प्रोटेस्ट थे ये उस वक्त हुए जिस वक्त ये कांस्टेंटली जो है ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं, खासतौर पे अल नसर हॉस्पिटल के ऊपर और उसमें 5 लोगों को मार दिया और फिर जो गाजा सिटी का शिफा हॉस्पिटल था वहां पे 6 लोगों को मार दिया है। बॉर्डर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो कहते हैं जी कि हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए इसके लिए कि जर्नलिस्टों को मारा जा रहा है और क्यों नहीं जर्नलिस्टों को बाकी फॉरन जर्नलिस्टों को जाने दिया जा रहा कि वो अपनी आंखों से देखें। अगर जो है ये कहता है जो है इसराइल के हम कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं तो हमको खुद अपनी आंखों से ये आप जो है देखने दें। और बहुत सारे जो वो कहते हैं जी कि लोग अभी भी वहां पे ट्रैप्ड है, हम इसको फिल्म करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन हमें इजाजत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट प्रेस जो है उसको, फॉरन प्रेस जो है उसको इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। अब ये सारे जो हैं ये मीडिया हाउसेज ये आप कह रहे हैं कि हम एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 4 कंप्लेंट्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में डाल रहे हैं फॉर इसराइल्स वॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट।
तो ये अब जनाब खबर आएगी तो हम आपको डिटेल देंगे। यमन के जो हुती हैं जी, उन्होंने मिस्र के अटैक्स किए हैं इजरायली ओन्ड लाइबेरियन फ्लैग टैंकर स्कारलेट रे के ऊपर इन रेड सी। यूके की जो मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी है उसने कहा कि ये मिसल जो है इसने मिस किया है और क्रू जो है वो कह रहा है कि ये पास ही इसने स्प्लैश किया, यानी कि पास ही समंदर में ये गिरा है और इससे कुछ भी इतना ज्यादा कोई लाउड बैंग जो है वो नहीं आया और कुछ इंजरीज जो है लाउड बैंग आया बस और इंजरीज जो है वो कोई भी नहीं हुए हैं। और जो इसराइल है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक कर रहा है, एयर रेड्स कर रहा है इसके ऊपर हूतीज पे, और उसके जवाब में हूतीज ने किया था। लेकिन ओवर द वीकेंड तो बहुत ही अफसोस का वाकया ये हुआ कि हूतीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद गालिब अल रहावी, वो इसराइल के अटैक में और बहुत से इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो उनकी डेथ हुई है। हूतीज जो है इससे पहले जुलाई के महीने में उन्होंने बड़ी प्रिसीजन अटैक्स किए थे जिसकी वजह से इनके दो टैंकर जो है वो सिंक किए थे, और उन्होंने कहा जी कि हम कॉन्स्टेंटली तुम्हारे जो इसराइल लिंक्ड वेसल्स हैं उनके ऊपर अटैक करते रहेंगे इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस और जो तुम लोग गाजा के अंदर कर रहे हैं। आज एज वी स्पीक मंडे को आज बहुत बड़ा फ्यूनरल था यमन के जो हूतीज प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए, तो इन्होंने जी प्राइम मिनिस्टर उनका जो है वो मारा है। नॉर्वे जो है जी उसने बहुत बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील किया है यूके के साथ और इसके अंडर जो है वो तकरीबन 13 एंटी सबमरीन वॉर फ्रिगेट्स और खरीदेगा जिसके के अंदर 8 जो हैं वो यूज करेगा यूके, 5 नॉर्वे करेगा। दिस इज अ 10 बिलियन पाउंड, यस यू हर्ड मी राइट, नॉट 10 बिलियन US डॉलर्स, 10 बिलियन पाउंड ये डील है। और इसके अंदर यूके के लिए ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसमें वो कहते हैं जी कि 4000 के करीब जॉब्स क्रिएट होंगी और ये 400 जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ जो नेटो है उसके भी जो है ये नॉर्दर्न फ्लैग जो है उसको ये हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो हैं उन्होंने भी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ जो आज बात की है फ्रैंको जर्मन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमको यूक्रेन का डिफेंस जो है वो बढ़ाने की जरूरत है और ईयू की इकोनॉमी जो कि वैसे तो दोनों के बीच में काफी वो रहते हैं यानी कि खराब रिलेशन रहते हैं, लेकिन अभी वो अच्छा उनको करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं जी कि नेटो का फ्यूचर को बचाने की जरूरत है और ईयू के को जो है वो सिक्योरिटी गारंटीज देने की जरूरत है क्योंकि यूएस जो है अब इसमें से पीछे निकल गया है। लेकिन आज जिस वक्त ये डील हो रही थी नॉर्वे और यूके की इंग्लैंड के अंदर, उस वक्त यूके की जो चैरिटीज है वो बहुत ज्यादा वहां पे जो है शोर मचा रही थी और उन्होंने आज कंडेम किया है होम सेक्रेटरी यूवेट कूपर का, जो कि अनाउंस उस वक्त कर रही थी कि जो रेफ्यूजी फैमिलीज का जो री यूनियन एप्लीकेशन है उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूके की चैरिटीज ने आज कहा कि ये बहुत ज्यादा हार्म लेकर आएंगे अनअकम्पनीड किड्स जो है उसके लिए और फैमिलीज को स्प्लिट करेंगे। तो वैसे तो एक तरफ यूरोप, जैसे कि हमने आपको बताया ही कि नॉर्वे, यूके, फ्रांस, जर्मनी एक तरफ तो डिफेंस जो है वो कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं क्योंकि यूएस पीछे हटता जा रहा है, उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स हैं इमिग्रेशन के और फैमिलीज को सेटल करने के और रेफ्यूजीज और इनके मसले जो हैं वो भी इन कंट्रीज के अंदर साथ साथ चलते जा रहे हैं, जिसकी की वजह से जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ी दुखी हैं। आज मेलबर्न में पुलिस ने पेपर स्प्रे किया और बैटन राउंड्स किए ऑन वायलेंट क्रैशेज, जो कि क्लैशेज हुए हैं बहुत सारे एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्टर्स और प्रो इमिग्रेंट प्रोटेस्टर्स के बीच में, और ये अनरेस्ट जो था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसके के लिए फिर पुलिस को ये करना पड़ा। इससे पहले भी ये जो रैलीज है ये मार्च से ही हो रही थी और ये हुई थी सिडनी में, कैनबरा, ब्रिस्बेन और पर्थ में हुई थी, और वहां पे जो है पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि ये जो मैस इमिग्रेशन बुलाई जा रही है ऑस्ट्रेलिया में इसको बंद करो क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कंडेम किया इन रैलीज को और उन्होंने कहा जी ये दिस इज वेरी रेसिस्ट। मल्टीकल्चरल अफेयर्स की जो मिनिस्टर हैं एन एली, उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्टर्स हैं ये इनके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नाट्सीज जो हैं वो, और तकरीबन 5000 लोग जो है आज मेलबर्न के अंदर जमा थे जिस वक्त उनके क्लैशेस जो है वो पुलिस के साथ हुए और फिर इतने ज्यादा बढ़ गए कि पुलिस को रायट स्क्वाड जो है उसको बुलाना पड़ा। इस सिलसिले में 6 लोगों को जो है वहां पे चार्ज भी किया गया है फॉर असॉल्ट एंड अदर चार्जेस, जो कि वो कहते हैं कि जी इन्होंने किया है पुलिस के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर भी, क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप्स थे। आज अफगानिस्तान के अंदर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है जिसके अंदर 800 लोगों की डेथ हुई है और तकरीबन 2800 लोग जो है वो इंजर्ड है। ये जो था आया था माउंटेनस एरिया नियर पाकिस्तान बॉर्डर, जहां पे के मड ब्रिक के होम्स जो थे वो बड़े हुए थे। अब जहर मड के होम्स थे तो उन्होंने तो क्लैप्स करना ही था, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जो बारिशें आ गई है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आ गई है और रोड्स जो हैं उन पे से पास नहीं किया जा सकता, तो इसलिए रेस्क्यू का काम जो है वो भी बहुत मुश्किल है। जो विलेजेस हैं वो कट ऑफ हैं और वहां पे जो है रेस्क्यूअर्स नहीं पहुंच सकते। इसके साथ साथ बहुत सारा जो एनिमल मरा है उसकी लाशें जो है पानी के ऊपर बह रही है और उसकी वजह से जो है पानी के अंदर कंटेमिनेशन और बीमारियां फैलने का भी बहुत ज्यादा खतरा है। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जी वो अभी तक तो वो मलबा अभी हमने साफ नहीं किया है, वो करेंगे तो उसके नीचे से और भी लाशें निकलेंगी तो डेथ टोल जो है वो शायद बढ़ सकती है, और बहुत सारे इलाके तो अभी भी जो है एक्सेसिबल नहीं है। ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है इसने आज सारी दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि भाई हमारा हेल्प करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलें यहां पे आगे है, और ऑलरेडी जो इनके पास लोग रह रहे थे अफगानिस्तान में उनको ये नहीं देख पा रहे थे, और अब आपको पता ही है कि नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि ईरान और पाकिस्तान उन्होंने भी बहुत सारे अफगान्स को डिपोर्ट किया था, तो अब वो जो मैस डिपोर्टेशन भी हो रही है उसकी वजह से भी जो इतने लोग आ रहे हैं उसकी वजह से भी रिसोर्सेज के ऊपर काफी वहां पर स्ट्रेन पड़ रहा है। चाइना के अंदर जनाब जो एससीओ की मीटिंग हुई है उसके अंदर एक जॉइंट जो स्टेटमेंट आया है उसने जो है बहुत ज्यादा कंडेम किया है ये जो रीसेंट टेररिस्ट अटैक्स हुए पहलगाम में, जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान में और खुजदार के अंदर, और उसमें कहा गया है जॉइंट स्टेटमेंट में कि ये जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल है उसको सामने लाया जाए और जो है ये एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो है उसको सामने लाने की जरूरत है। ये सारे लीडर्स जो थे जमा थे टियानजिंग के अंदर, और इन्होंने कहा जी कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है जो कि यूज की कर रहे हैं अपने आप को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, तो ये जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इनके खिलाफ कॉम्बैट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एससीओ ने कहा कि हम बिल्कुल डिसएग्री करते हैं ये कि जो टेररिज्म के जो बढ़ावे जो है वो दिए जा रहे हैं जो रीजन के अंदर जैसे कि बलूचिस्तान में या कि जो पहलगाम के अंदर जो कुछ भी हुआ है, और जो है इसके अंदर ऑफकोर्स जो है ये जाफर एक्सप्रेस को भी बहुत बढ़ा के बात किया गया जो कि पाकिस्तान की काफी वैसे भी विन है क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले ही आपको पता ही है कि यूएस ने डेजिग्नेट किया था बीएलए जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी जो ब्रिगेड मजीद ब्रिगेड फैक्शन है उसको एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बीएलए ने रिस्पांसिबिलिटी लिया था जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक के लिए मार्च में। एससीओ की ये जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन होना चाहिए अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग, और उन्होंने जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो उन्होंने खड़ा किया था एससीओ ने जिसको रैट्स बोलते हैं, रैट्स के रोल का बहुत ज्यादा उन्होंने तारीफ किया, और उन्होंने कहा जी कि एक हमको ज्वाइंट एंटी टेररिज्म ड्रिल जो है वो भी करनी चाहिए है, और ये जो जैसे कि की गई थी इंटर एक्शन एंटी टेरर 2024 एक्सरसाइज इन जिनजियांग उसको और जो है बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो है अब ये भी कहा गया कि अब जो नेक्स्ट इस तरह की मीटिंग रहेगी वो दुशंबे प्रोसेस होएगा और ये न्यूयॉर्क के अंदर होएगी नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर, तो ऐसा है। एससीओ की जो मीटिंग हुई है जी उसमें चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो बयान दिया है, और उन्होंने कहा जी कि एक मेगा स्केल का मार्केट जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड एआई। उन्होंने कहा जी कि ये जो एससीओ का एक मॉडल है उसके लिए आज उन्होंने नई बात की, उन्होंने कहा कि हमको एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर जो है लाना पड़ेगा जिसमें कि इक्वल मल्टी पोलराइजेशन है और इंक्लूसिवनेस है और ग्लोबलाइजेशन है और फेयर ग्लोबल गवर्नेंस है, और इसमें वो कहते हैं जी कि ये हम पेश कर रहे हैं, यानी कि जाहिर है कि उन्होंने लफ्जों में नहीं बोला लेकिन उनका मतलब यही था कि ये जो यूएस का जो सिस्टम है उसका एक अल्टरनेटिव हम लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ आज चाइना ने अनाउंस किए हैं 2 बिलियन यूएन के फ्री एड और 10 बिलियन यूएन के लोन्स टू एससीओ बैंकिंग कंसोर्टियम दिस ईयर। वो कहते हैं जी हमको अपना खुद का बैंक खोलने की अब जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि हमको ये जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी है इसको अब खत्म करना चाहिए, और जाहिर है कि ये सारे दुनिया वहां पे बैठी समझ ही रही थी कि ये वेल्ड क्रिटिसिज्म है यूएस पॉलिसीज का और टैरिफ वॉर का जो कि वो बात कर रहे थे। और ये इस जो समिट थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको अटेंड किया है लीडर्स लाइक प्यूटिन ने, मोदी जी ने और शहबाज शरीफ साहब ने, अलॉन्ग साइड सेंट्रल साउथ मिडल ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो आए हुए थे, शोइंग के ग्लोबल साउथ जो है वो अब कंसोलिडेट हो रहा है अंडर चाइना। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल जो है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटरस, उन्होंने बहुत तारीफ की चाइना के रोल की कि वो मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करता है। एससीओ जो है वो शुरू हुआ था 6 मेंबर से और यूरेशियन जो नेशन से, और अब इस वक्त 10 उसके परमानेंट मेंबर्स हैं और 16 ऑब्जर्वर्स या के फिर डायलॉग पार्टनर्स जो है वो है। तो ये काफी इसको गौर से देखा गया, और चूंकि जाहिर है कि वो जो इलाके में लोगों की बहुत सारी ये पहले डिपेंडेंस और दोस्तियां अमेरिका के साथ थी, तो ये सारी की सारी दोस्तियां और फोकस जो है अब शिफ्ट होता जा रहा है चाइना की तरफ। तो जाहिर है कि इसके लिए अमेरिका को चिंता तो है जनाब, लेकिन अभी उनके पॉलिसीज ही ऐसे हैं और ट्रंप साहब जो है एक मिनट जो है वो ऐसा नहीं होता कि लोगों को ये डरावा ना देते हुए कि जी हम टैरिफ लगा रहे हैं, तो लोग अब जाहिर है कि उनसे हट रहे हैं और चाइना के करीब पहुंचे, क्योंकि चाइना जाहिर है कि किसी को बुली नहीं करता ना, और ट्रेड के ऊपर तो वो बड़े प्यार मोहब्बत से आपसे वैसे भी बात करते हैं। हम लेते हैं जनाब यहां पे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स पे।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास।
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बाइंग और सेलिंग,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो,
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज,
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट।
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी,
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड। प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस। आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं, घर की इवेल्युएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर 6478986245 8986245।
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजुर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार, प्रिंसिपल ब्रोकर। कॉल टुडे 6479235659 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
सिर्फ $100 में एक नाबीना शख्स की बिनाई बहाल करें, आपका अतिया एक जिंदगी बदलने वाले मोतिये का ऑपरेशन मुमकिन बना सकता है। एक यतीम बच्चे की कफालत करें, एक जिंदगी बदलें। सिर्फ $50 महाना एक यतीम बच्चे के लिए उम्मीद की किरण है। 1983 से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ। दिल से कदम बढ़ाएं, आज ही डोनेशंस दें @almustafacanada.org।
जी वेलकम बैक। तो एससीओ की जो मीटिंग चल रही थी उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने रेज किया फिर से एक दफा मसला यहां पे इंडस वाटर ट्रीटी का जो है, और उस पर उन्होंने कहा जी कि ये सारे जो मामलात रीजन के अंदर है ये डायलॉग, डिप्लोमेसी और कंसल्टेशन से हल होने चाहिए, कन्फ्रंटेशन से नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया इंडिया का जो यूनिलैटरल उसने डिसीजन अप्रैल में लिया था कि वो सस्पेंड करेगा इस ट्रीटी को, और उसने एससीओ के मेंबर्स को कहा कि भाई इनको बोलें कि आप अपहोल्ड किया करें इंटरनेशनल और बायोलैटरल जो ट्रीटमेंट्स हैं, अग्रीमेंट्स जो हैं एटलीस्ट उनको। उन्होंने कहा कि हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि अन इंटरप्टेड एक्सेस टू वाटर जो है अंडर द एग्जिस्टिंग ट्रीटी वो हमें मिलता रहे, ताकि जो है मुल्कों के बीच में ताल्लुकात स्ट्रेंथन किए जा सकें और हम जो हमारे ब्रॉडर गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकें, बजाय इसके कि हम पैटी जो लड़ाइयां हैं उनके अंदर पड़े रहे। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बिल्कुल अपने नेबर्स के साथ नॉर्मल और स्टेबल टाइज जो है वो रखना चाहता है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो है उसने कहा है कि हमारे जो प्रायोरिटी है वो स्मॉल डैम्स बिल्कुल होने चाहिए, अगर बड़े डैम्स नहीं भी बन रहे हैं तो भी स्मॉल डैम्स हमको बनाने की जरूरत है, और अगर डैम्स नहीं है तो वाटर रिजर्वॉयर्स तो जरूर होने चाहिए फॉर کیونکہ فار ڈیکڈز جو ہے لارج اسکیل پروجیکٹس جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا جی کہ فلڈز جو ہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے اور یہ انکروچمنٹس کیے گئے ہیں ریورز پہ اور واٹر ویز کے اوپر. نیچرل اسمبلی میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہومز ہی نہیں صرف ہوٹلز جو ہیں وہ بھی نیچرل واٹر کورسز جو ہے اس کے اوپر بنائے گئے جس کی وجہ سے بہت سارا جو یہ ہے ڈیمیج فلڈ لے کے آ رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہیوی رین فال کی وجہ سے اور پیسج نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج بھی ہیوی رین فال ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد اور راولپنڈی میں. نالا لئی کے اندر لیول جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہ پانی کا لیول اٹ روز ٹو 13 فیٹ ایٹ کٹاریاں اینڈ 4 فیٹ ایٹ گوال منڈی. لوگوں اتھارٹیز نے کہا ہے جی کہ ہم سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں فردر فلڈنگ کو روکنے کے لیے. جو واسا کے ایم ڈی ہے سلیم اشرف صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک رین ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے اور سٹاف اور مشینری بالکل ہم نے جو ہے ہینڈی رکھا ہوا ہے کرائسس کو دیکھنے کے لیے. پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ آج وزٹ کر رہی تھی ہاسپٹلز کو نیئر جھنگ فلڈ ریلیف کیمپ ٹو ریویو میڈیکل فیسلٹیز اور وہ سارا جو ہے وہ اور سٹیپس جو لیے گئے ان کو دیکھ رہے تھے. سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ وہ بھی آج ریویو کر رہے تھے واٹر لیولز ایٹ فلڈ کنٹرول روم اور انہوں نے آفیشلز کو کہا کہ بالکل ہائی الرٹ پہ رہے اور ہیلتھ اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی. اس کے ساتھ ساتھ آج انڈین ہائی کمیشن جو اسلام آباد میں ہے اس نے آج وارن کیا پاکستان کو کہ ستلج کے اوپر بہت ہی زیادہ ہائی لیول واٹر دیکھا جائے گا. یہ جو رائزنگ واٹر لیول ہے اس کی وجہ سے کافی پرابلمز پاکستان میں آئے ہیں. 251 ولیجز جو کہ چناب کے پاس تھے بالکل پانی کے نیچے ہے. 2.4 ملین لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں. 3100 ولیجز ان پاکستان اینڈ کوئی 2900 ہیملٹس جو ہیں وہ بھی بالکل پانی کے نیچے ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ان کی پارٹی نیشنل اسمبلی کے سیشنز کو بوائیکاٹ کر رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ ان کے بہت سارے لا میکرز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے, ان کی سیٹیں لے لی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہماری ویسے بھی وائس جو ہے اس کو سارا وقت کاٹا جا رہا ہوتا ہے ہمیں, جو یعنی کاٹنے کا مطلب ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ سنی نہیں جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈیسیجن جو ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی جو میٹنگ ابھی ہوئی تھی ویکینڈ پہ اسلام آباد میں اس میں یہ ہے انڈر دا انسٹرکشنز آف عمران خان. انہوں نے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا اتھارٹیز کو کہ وہ پی ٹی آئی کو جو ہے اس نے انڈیپینڈنس ڈے کے جو ایونٹس تھے وہ تک ہولڈ نہیں کرنے دیے. پی ٹی آئی کے اسد کیسر جو ہے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ بہت زیادہ ایڈ جو ہے فلڈ وکٹمز کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا جی کے پی کی گورنمنٹ پوری اپنی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کے پاس اتنے فنڈز یعنی ریسورسز اتنے نہیں ہے اور انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کو کہا اور عمران خان صاحب کو کہا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر سامنے آئے اور ایک فنڈ ریزنگ انیشیٹو کو آپ لیڈ کریں تو اچھا. تو عمران خان صاحب بےچارے جیل سے کیسے لیڈ کریں گے نا, فنڈ ریزنگ کے لیے آپ کو ٹی وی پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو برحال سے کے پی کے جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈاپور صاحب اس نے ارج کیا ہے کہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے کالا باغ ڈیم طرح کے پروجیکٹس میں کیونکہ اگر ہم نے اپنے پروونشل ڈفرینسز کو ختم نہ کیا اپنے خود کے بینیفٹس کے لیے تو ہماری فیوچر جنریشنز اینڈ دا ہول آف پاکستان جو ہے اس کی وجہ سے سفر کرے گا. وہ آج نکلے ہوئے تھے جو ریلیف ایفرٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے امڈ ہیوی رینز اینڈ فلڈز. انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل پنجاب کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کرتے ہیں, پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے خرابی آئی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کے ریلیز پہ کہا جی کہ یہ دو صورتوں میں ہی پاسبل ہے, یا تو کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے طریقہ اپنایا جائے یا کہ پھر کمپرومائز کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن ہم عمران خان کے آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس میں ہم کو بہت پیشنس دکھانا پڑے گا اور اپنا اسٹرگل جو ہے اس کو بھی کنٹینیو کرنا پڑے گا. پائن تھی باہر ہونا تو پیشنس دکھا سکتے ہو, بےچارہ بندہ جو ہے دو سال کا اندر اس کا سوچو. آج پانچ پاکستان ملٹری کے جو پرسنل ہیں انکلوڈنگ دو میجر جو ہیں دے ڈائڈ وین MI-17 ہیلی کاپٹر جو ان کا کریش کر گیا تھا ہندر دائمر ڈسٹرکٹ آف گلگت بلتستان میں ایک روٹین فلائٹ کے اوپر تھا اکارڈنگ ٹو ISPR. یہ کریش جو ہے یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہوا. میجر عاطف جو تھے اس کے اندر تھے وہ پائلٹ ان کمانڈ تھے, میجر فیصل کو پائلٹ تھے, نائب صوبے دار مقبول فلائٹ انجینئر تھے, حوالدار جہانگیر جو تھے کرو چیف تھے, نائک عامر جو ہیں وہ کرو چیف تھے, ان سب کی ڈیتھس ہوئی ہیں. پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر جو ہے یہ لاس آف لائف کے اوپر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا. لیوٹیننٹ جنرل طیب سکر عبداللہ النویمی جو ہیں چیف آف سٹاف آف بحرین ڈیفنس فورسز وہ آج اسلام آباد میں انہوں نے ملاقات کی ہے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ان کے ساتھ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنا بایو لیٹرل ملٹری کوآپریشن جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں اور جوائنٹ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں اور کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ हम आपके साथ जो है अपने इंजीनियर्स और पायलट्स को खास तौर पे हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वाह क्या बात है। जिस वक्त ये पहुंचे तो पीएफ ने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सिद्धू साहब जो है उन्होंने हाईलाइट किया पाकिस्तान बहरीन का जो हिस्टोरिकल टाइज है, उन्होंने कहा जी हम ये इनको और एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर डिफेंस ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। और रणवीमी साहब ने जाहिर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म और उसका जो टेक्निकल एडवांसमेंट है और जो कुछ चीजें जो है पाकिस्तान एयरफोर्स और बाकी मिलिट्री बनाती है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ जो है वो की है। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब मामलात जो है सियासत के काफी गर्म है। आपको पता ही है कि जो जितनी भी इंडिया अलायंस है वो इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा पे निकली हुई है। तो इसके ऊपर राहुल गांधी जो है उन्होंने वार्न किया है बीजेपी को कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब ऑफ रेवलेशंस जो है वो सामने आएगा ऑन अलेज्ड वोट चोरी। उन्होंने कहा जी कि ये जो है बल्कि रेवलेशंस एटम बॉम्ब से भी बड़े होंगे और मोदी जी जिस वक्त ये सारी सच्चाई आएगी तो अपना मुंह दिखाने के किसी को काबल नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जो है बिहार में बात कर रहे थे और उन्होंने वोटर्स की बहुत ज्यादा तारीफ की कि आपने जैसे सपोर्ट किया ऑपोजिशन का महागठबंधन और वो जो वहां पे लोग नारे लगा रहे थे वोट चोरी गद्दी चोर वोट चोर, तो उन्होंने कहा जी कि इसकी आवाज तो जो है चाइना तक पहुंच रही होगी। जाहिर है कि आपको पता ही है कि वो एक वेल्ड जो है वो जाइब ले रहे थे मोदी जी के ऊपर क्योंकि वो एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना में है तो उसी का जिक्र कर रहे थे। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये जो बिहार के अंदर डबल इंजन गवर्नमेंट चलाई जा रही है और उन्होंने तो प्रिडिक्शन भी आज दे दी कि मोदी जी की सरकार इन अदर छह महीने में जो है नहीं बिहार की